पृष्ठ संख्या 52 सादा, पृष्ठ संख्या 53 खंड 2, पृष्ठ संख्या 54 सादा, पृष्ठ संख्या 55 हिंदी की पहली आधुनिक कविता। हिंदी आलोचना में इस प्रश्न पर लंबी बहस हुई है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, और इस पर भी बहस होती रही है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। ऐसी बहसों में हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, लेकिन इस बात की कभी चर्चा नहीं हुई कि हिंदी की पहली आधुनिक कविता कौन सी है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता का अनुभव ही नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि इस प्रश्न पर गंभीर विचार होना चाहिए कि हिंदी की पहली आधुनिक कविता कौन सी है। इस प्रश्न पर बात करते समय सबसे पहले यह विचारणीय है कि हिंदी की पहली आधुनिक कविता की खोज के प्रसंग में आधुनिक का अर्थ क्या है। सामान्य रूप से हिंदी साहित्य में और विशेष रूप से हिंदी कविता के संदर्भ में आधुनिकता की बात करते समय भाषा का प्रश्न सामने आता है। कविता के प्रसंग में खड़ी बोली में लिखी गई कविता ही आधुनिक कविता मानी जाती है। भारतेंदु युग से खड़ी बोली में हिंदी कविता की शुरुआत होती है, लेकिन उस समय काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा ही अधिक प्रचलित थी। लंबे समय तक इस बात पर विवाद होता रहा कि क्या ब्रजभाषा को छोड़कर खड़ी बोली में हिंदी कविता लिखी जा सकती है। धीरे धीरे यह विवाद समाप्त हुआ और खड़ी बोली हिंदी गद्य के साथ कविता की भाषा के रूप में भी स्वीकृत हुई। वैसे ब्रजभाषा के पीछे कविता की एक लंबी परंपरा थी, तो खड़ी बोली के पीछे भी कविता की एक समृद्ध परंपरा थी जिसे उर्दू कविता कहा जाता है। कठिनाई यह थी कि 19वीं सदी में हिंदी और उर्दू की अनेक स्तरीय एकता के बावजूद दोनों के बीच अलगाव बढ़ रहा था, और हिंदी में खड़ी बोली की कविता की एक ऐसी परंपरा के निर्माण की कोशिश हो रही थी जो उर्दू कविता की भाषा से अलग और स्वतंत्र हो। जो लोग उर्दू कविता की परंपरा से परिचित थे वह जानते हैं कि उर्दू की कविता खड़ी बोली की ही कविता है। मीर और नज़ीर की कविता से यह बात साबित होती है कि काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास 18वीं सदी में अत्यंत उन्नत रूप में पृष्ठ संख्या 56 हो चुका था। नज़ीर और मीर की कविता की बनावट और वाक्य संरचना में खड़ी बोली हिंदी का अत्यंत विकसित स्वरूप दिखाई देता है। मीर की कविता में खड़ी बोली का आरंभिक रूप इस प्रकार है। होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर, क्या काम मोहब्बत से उस आराम तलब को। नज़ीर की कविता में खड़ी बोली का यह रूप है। रोटी न पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो, मेले की सैर ख्वाहिशे बागो चमन न हो, भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो, सच है कहा किसी ने कि भूखे भजन न हो। अगर आज भी कोई हिंदी का कवि सहज और प्रभावशाली हिंदी लिखना चाहेगा तो उसकी भाषा मीर और नज़ीर की भाषा के करीब होगी। मीर स्वयं अपनी भाषा को हिंदी ही कहते थे और उसे वह अरबी फारसी के प्रभाव से बचाना भी चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था, क्या जानू लोग कहते हैं किसको शुरूर ए कल्ब आया नहीं या लफ्ज तो हिंदी जुबां के बीच। हिंदी के जो लोग उर्दू शायरी में अरबी फारसी के शब्दों संधियों और समासों को देखकर मुंह बिचकाते हैं और उसे पराया समझते हैं, उन्हें प्रिय प्रवास और राम की शक्ति पूजा की संस्कृत में हिंदी पर भी ध्यान देना चाहिए। असल में खड़ी बोली हिंदी के सहज स्वाभाविक रूप को बिगाड़ने के दो स्रोत हैं, एक अरबी फारसी की शब्दावली और दूसरे संस्कृत की तत्सम पदावली। इन दोनों से बचकर ही सहज स्वाभाविक खड़ी बोली हिंदी पहले भी विकसित हुई है और आज भी विकसित हो सकती है, बशर्ते कि अतिवादी दुराग्रहों से बचा जाए। ऐसी ही हिंदी भारतेंदु युग में विकसित हो रही थी, लेकिन हिंदी उर्दू के विवाद ने दोनों के बीच अलगाव और दूरी पैदा करने का जो प्रयत्न किया उसके परिणाम स्वरूप बाद के दिनों में दोनों भाषाएं अलग हो गईं और उनकी साहित्यिक परंपराएं भी। हिंदी की पहली आधुनिक कविता की खोज और पहचान के प्रसंग में उस चेतना की विशेषता को जानना जरूरी है जो हिंदी कविता को आधुनिक बनाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम प्रशंसक थे, फिर भी उन्होंने लिखा है कि भारतेंदु की कविता में आधुनिकता कम ही मिलती है। आखिर वह कौन सी आधुनिकता थी जो आचार्य शुक्ल को भारतेंदु के नाटकों में तो मिलती थी और निबंधों में भी, परंतु उनकी कविता में कम ही मिलती थी। हिंदी में आधुनिक होने के लिए आचार्य शुक्ल के अनुसार अपने समय और समाज के प्रति सजगता, पृष्ठ संख्या 57 आवश्यक है। भारतेंदु युग की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि देश उपनिवेशवाद का शिकार था, इसलिए उपनिवेशवाद की स्थिति, भारत की गुलामी और उससे स्वाधीन होने की चेतना आधुनिकता की अनिवार्य शर्त थी। उस समय जो कवि अपने समाज की सबसे बड़ी वास्तविकता अर्थात देश की पराधीनता और उसके विरोध में क्रियाशील स्वाधीनता की भावना के बारे में सजग नहीं होगा, वह आधुनिक भी नहीं होगा। यही कारण है कि छायावाद के काल में कविता लिखते हुए भी जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक कवि नहीं है। आज भी ऐसे लोगों का अभाव नहीं है जो अपने समय और समाज की लोकव्यापी वास्तविकता के बारे में सजग होने की जरूरत नहीं समझते। वह अपने समय और समाज दोनों का प्रतिपक्ष बनकर स्वयं अपनी स्वायत्त सत्ता की अभिव्यक्ति अपनी रचनाओं में करते हैं। ऐसी कामना रचनाकार को आधुनिकता से दूर ले जाती है। साहित्य का एक काम कामनाओं का विस्तार भी है, लेकिन अगर कामनाओं का विस्तार जमीन पर नहीं आसमान में होने तो साहित्य रचना पतंगबाजी बन जाती है। भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कहने और भारतेंदु को आधुनिक साहित्य का प्रवर्तक मानने के कारण की ओर संकेत करते हुए आचार्य शुक्ल ने ठीक ही लिखा है कि प्रायः सभी सभ्य जातियों का साहित्य उनके विचारों और व्यापारों से लगा हुआ चलता है। यह नहीं है कि उनकी चिंताओं और कार्यों का व्यापार एक ओर जा रहा हो और उनके साहित्य का प्रवाह दूसरी ओर। भारतेंदु युग के ठीक पहले हिंदी भाषी समाज और हिंदी साहित्य में यही स्थिति थी। आचार्य शुक्ल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने हमारे जीवन के साथ हमारे साहित्य को फिर से लगा दिया, बड़े भारी विच्छेद से हमें बचाया। इसी प्रक्रिया में भारतेंदु के प्रयत्न से हिंदी साहित्य में ऐसी आधुनिकता आई और आधुनिक काल भी जिसमें भारत की पराधीनता की यातना का बोध था और स्वाधीनता की चेतना के जागरण की पहचान भी। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी में नाटक, निबंध और साहित्यिक पत्रकारिता के प्रवर्तक तो थे ही, वे महत्वपूर्ण कवि भी थे। उन्होंने मुख्य रूप से ब्रजभाषा में कविताएं लिखी हैं, लेकिन ब्रजभाषा के साथ साथ उन्होंने संस्कृत, बंगला, उर्दू, गुजराती, मारवाड़ी और पंजाबी में भी कविताओं की रचना की है। इन सब के साथ ही उन्होंने अपने समय की मांग को पहचानते हुए 1881 में खड़ी बोली में भी कुछ कविताएं लिखकर भारत मित्र में प्रकाशन के लिए भेजा और साथ में एक पत्र भी जिसमें यह लिखा था कि प्रचलित साधु भाषा में कुछ कविता भेजी हैं, देखिएगा कि इसमें क्या कसर है और किस उपाय के अवलंबन करने से इस भाषा में काव्य सुंदर बन सकता है। इस विषय में सर्वसाधारण की अनुमति ज्ञात होने पर आगे से वैसा परिश्रम किया, पृष्ठ संख्या 58 जाएगा। तीन भिन्न भिन्न छंदों में यह अनुभव करने ही के लिए कि किस छंद में भाषा का काव्य अच्छा होगा, कविता लिखी है। मेरा चित्त इससे संतुष्ट ना हुआ और ना जाने क्यों ब्रजभाषा से मुझे इसके लिखने में दूना परिश्रम हुआ। इस भाषा की क्रियाओं में दीर्घ मात्रा विशेष होने के कारण बहुत असुविधा होती है। मैंने कहीं कहीं सौकर्य के हेतु दीर्घ मात्राओं को भी लघु करके पढ़ने की चाल रखी है। लोग विशेष इच्छा करेंगे और स्पष्ट अनुमति प्रकाश करेंगे तो मैं और भी लिखने का यत्न करूँगा। 1 सितंबर 1881 को लिखे भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय खड़ी बोली हिंदी में कविता की क्या स्थिति थी और खड़ी बोली के कवि के रूप में भारतेंदु किस मनोदशा से गुजर रहे थे। उनके इस पत्र से यह भी स्पष्ट है कि वह खड़ी बोली में लिखी अपनी कविता से न संतुष्ट थे न आश्वस्त। हिंदी की पहली आधुनिक कविता वही होगी जो एक तो खड़ी बोली में लिखी हुई हो दूसरे भारत की पराधीनता की पहचान के साथ ही स्वाधीनता की चेतना की अभिव्यक्ति उसमें भी हो। ऐसी ही कविता है स्वप्न, जो 13 अक्टूबर 1881 को पटना से प्रकाशित होने वाली बिहार बंधु नामक पत्रिका में छपी थी। उसके कवि हैं पटना निवासी महेश नारायण। यह कविता अयोध्या प्रसाद खत्री द्वारा 1887 ईस्वी में संपादित और प्रकाशित खड़ी बोली का पद्य पहला भाग में संग्रहित है। खड़ी बोली का पद्य में राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, राय सोहनलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मौलवी इल्ताफ हुसैन, बाबू लक्ष्मी प्रसाद, श्री सत्यानंद अग्निहोत्री आदि की कविताएं हैं और खड़ी बोली का पद्य दूसरा भाग में श्रीधर पाठक की कविताएं हैं। खड़ी बोली का पद्य के दोनों भागों में संकलित कविताओं में केवल महेश नारायण की स्वप्न नामक कविता ही ऐसी रचना है जिसमें भारत की प्रतंत्रता का बोध और स्वतंत्रता की चेतना व्यक्त हुई है। इसलिए इसे हिंदी की पहली आधुनिक कविता कहना उचित ही है। 19वीं सदी से भारत में नवजागरण की जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी उसको समझने के लिए अगर हम 19वीं सदी के भारतीय साहित्य पर ध्यान दें तो उसमें स्वप्न पर लिखी रचनाओं की बहुलता दिखाई देती है। इस प्रवृत्ति की पहचान को अगर हम केवल हिंदी साहित्य तक सीमित रखें तो भी यह स्पष्ट हो जाएगा कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं सदी के चौथे दशक तक के हिंदी साहित्य में स्वप्न अनेक रूपों में हमारे सामने आता है। हिंदी में स्वप्न से जुड़ी अनेक रचनाएं भारतेंदु युग में लिखी गई थीं। उनमें प्रमुख है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी, राजा भोज का सपना, बाबू तोताराम का निबंध एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, बालकृष्ण भट्ट का विचित्र स्वप्न, राधाचरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा और बाल मुकुंद गुप्त का दिवा स्वप्न के रूप में, शिव शंभु का चिट्ठा। इसी क्रम में हम पृष्ठ संख्या 59 रामनरेश त्रिपाठी की रचना स्वप्न को भी याद कर सकते हैं और छायावादी कविता में स्वप्न की उपस्थिति को भी। एक विचारणीय प्रश्न यह है कि नवजागरण काल के साहित्य में स्वप्न की इतनी अधिक उपस्थिति और उसके रचनात्मक प्रयोग का संवेदनात्मक उद्देश्य क्या है। वाल्टर वेयामिन ने ठीक ही लिखा है कि प्रत्येक युग आने वाले युग का केवल स्वप्न ही नहीं देखता बल्कि स्वप्न देखने की प्रक्रिया में ही जागरण की दिशा में आगे भी बढ़ता है। 19वीं सदी के भारतीय साहित्य और विशेष रूप से हिंदी साहित्य में स्वप्न के रचनात्मक उपयोग का एक उद्देश्य है नए युग की संभावनाओं की खोज करना और उसके साथ ही आत्मसजग होकर सामाजिक रूप से जागृत होना। ऐसी रचनाओं में यथार्थ और स्वप्न का जो संबंध दिखाई देता है उसमें पराधीनता के यथार्थ और स्वाधीनता के स्वप्न की द्वंद्वात्मकता व्यक्त हुई है। यथार्थ और स्वप्न की यही द्वंद्वात्मकता महेश नारायण की कविता स्वप्न में मिलती है और उसे गहरे तथा व्यापक अर्थ में पहली आधुनिक कविता बनाती है। इस कविता पर विचार करते समय यह भी ध्यान में रखना होगा कि इसकी रचना 1857 के महाविद्रोह के 23 वर्षों बाद और कांग्रेस की स्थापना 1885 से 4 वर्ष पहले हुई थी। स्वप्न एक स्वच्छंदतावादी प्रेम कविता है। यह 33 खंडों में फैली एक लंबी कविता है। इस कविता की संरचना फैंटेसी के माध्यम से निर्मित हुई है। फैंटेसी का उपयोग करते हुए लंबी कविता लिखने का जो प्रयत्न मुक्तिबोध के यहाँ मिलता है उसका पूर्वाभास स्वप्न में दिखाई देता है। इस कविता में एक छोटी सी कथा है। इसमें चंद्रलोक की एक सुंदरी की प्रेम कथा और जीवन कथा है। उस सुंदरी का एक युवक से प्रेम हो जाता है जिसका पता चलने पर उसके माता पिता नाराज होते हैं और उसका विवाह एक वृद्ध से कर देते हैं। वृद्ध पति की मृत्यु के बाद वह अपने माता पिता के घर में रहने लगती है। एक बरस बाद वह अपने जीवन से ऊब कर घर से निकल पड़ती है और एक वन में उसकी भेंट अपने पुराने प्रेमी से होती है। उसी समय उसका पिता वहां पहुंचता है और क्रोध में वह सुंदरी को शून्य में फेंक देता है। वह पृथ्वी पर भारत के एक जंगल में आकर गिरती है और वहां अपने प्रिय को पुकारते हुए जीवन बिताती है। वह आसपास के वृक्षों को अपनी जीवन कथा सुनाती है और चंद्रलोक से भारत की तुलना करती है। इस कविता में फैंटेसी के माध्यम से भारत को चंद्रलोक और चंद्रलोक को भारत बना दिया गया है। यह कविता एक स्तर पर यूटोपिया की भी रचना करती है। स्वप्न कविता में स्वाधीनता की आकांक्षा बार बार सामने आती है। कवि ने प्रकृति चित्रण में भी स्वाधीनता की अभिव्यक्ति के लिए जगह बना ली है। वह एक जंगल का चित्रण करते हुए कहता है, पृष्ठ संख्या 60। आती थी उस जगह से स्वाधीनता की खुशबू, स्वाधीन थे दरख्त वो, स्वाधीन थी लताएं, स्वाधीन सुर थे चिड़ियों की, स्वाधीन थी गतें। इस कविता की प्रखर राजनीतिक चेतना 22वें और 23वें खंड में व्यक्त हुई है, जिसमें स्वाधीनता की जितनी प्रबल आकांक्षा है, पराधीनता की उतनी ही तीखी आलोचना भी है। सुंदरी भारत से चंद्रलोक की तुलना करती हुई कहती है, क्या है यह आहा हिंद की जमीन, होगी तो जरूर यह स्वाधीन। चंद्रलोक से आई हूँ मैं, जहाँ अधीनता की है बड़ी ही बड़ाई। राजा तो यहाँ यहीं के होंगे, वहाँ तो हैं विदेशी राज करते। इस कविता में अंग्रेजी राज की रीति नीति और भारतीय जीवन पर उनके घातक प्रभावों की मार्मिक अभिव्यक्ति है। अंग्रेजी राज में पराधीनता की प्रशंसा और स्वाधीनता की आलोचना करके ही भारतीय चैन की सांस ले सकते थे। इस प्रवृत्ति की पहचान भी इस कविता में है। भारत के धन की उपनिवेशवाद द्वारा लूट की जो चिंता भारतेंदु के नाटक भारत दुर्दशा में व्यक्त हुई है, वह इस कविता में भी है। रुपये तो यहाँ के यहाँ ही रहते होंगे, और यहाँ के भले में सर्फ होते होंगे, वहाँ तो जमा भी नहीं होते कि हैं कर लेते वह अगोढ़ बटाई। भारतेंदु गिन साहित्य के संदर्भ में देशभक्ति और राजभक्ति के बीच द्वंद्व की चर्चा बहुत हुई है। प्रायः उस युग के लेखकों पर राजभक्ति का आरोप भी लगाया जाता रहा है। इस कविता में भक्ति की ऐसी मूलगामी आलोचना है, जिसके अंतर्गत राजभक्ति और देशभक्ति दोनों की विकृतियों पर व्यंग्य है। अतिभक्ति है चोरों का लक्षण, गूढ़ता काली है भक्ति में समाई। हाल के वर्षों में साम्राज्यवाद से संबंध के संदर्भ में इतिहासकारों ने भक्ति भाव की भूमिका पर विचार किया है। सबाल्टर्न इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तक रणजीत गुहा ने भक्ति को पराधीनता की परम विचारधारा मानते हुए लिखा है कि अंग्रेजी राज से सहयोग और उसका आज्ञाकारी बनने की प्रवृत्ति का एक स्रोत भक्ति की परंपरा भी है। इस कविता में अंग्रेजी राज के दौरान भारतीयों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगे तरह तरह के प्रतिबंधों की तरफ संकेत है, और अंग्रेजी राज के लोकतंत्र संबंधी दावों के झूठ का पर्दाफाश भी है। पृष्ठ संख्या 61। समाचार पत्र यहाँ के होंगे स्वाधीन, जवां उनकी काहे गई होगी छीन। देसी समाचार पत्र हैं वहाँ भी, पर बंद हैं इनकी स्वाधीन छपाई। 1857 के महाविद्रोह के बाद भारत में समाचार पत्रों पर जो पाबंदियां लगी और दमन चक्र चला, उनकी अनुगूंज इन पंक्तियों में सुनाई देती है। इसके साथ ही भारतीयों को निरस्त्र करने और उनकी प्रतिरोध की क्षमता को समाप्त करने के लिए उपनिवेशवाद ने जो कदम उठाए, उनकी ओर संकेत निम्नलिखित पंक्तियों में है। रैयत तो यहाँ रखती होगी अपना हथियार, हम लोगों के पास वहाँ नहीं है एक तलवार। है हम लोगों को उनकी यह भक्ति कि दे के सब अस्त्र स्वाधीनता ही गंवाई। 1857 के बाद विक्टोरिया के घोषणा पत्र में भारतीयों से तरह तरह के वादे किए गए थे, पर वादा खिलाफी साम्राज्यवाद के चरित्र की बुनियादी विशेषता है। यह इस कविता से जाहिर होता है। आशा है बहुत वह हमको देते, आशाओं पर हमसे काम लेते। वादा जो खिलाफ हो कहें वह आया है नहीं अभी समय, वह धीर धरो फल पाओगे तुम, क्या है अभी उम्र तुम्हारी गमाई। 1881 में लिखी यह कविता प्रेमचंद के इस कथन को सच साबित करती है कि साहित्य इन्वर्टेड कॉमा देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। इन्वर्टेड कॉमा बंद। स्वप्न नामक कविता की एक विशेषता उसकी छंद योजना भी है, जो उसकी आधुनिकता को पुष्ट करती है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग है। कविता में कुछ ऐसे छंद भी हैं जो उस समय उर्दू कविता में प्रचलित थे, लेकिन इस कविता की छंद योजना की सबसे चकित करने वाली विशेषता यह है कि इसमें मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। आप कविता के निम्नलिखित अंश को ध्यान से पढ़िए। एक कुंज वह कुंज पेड़ों से घिरा था, झरने के बगल में बिजली की चमक भी न पहुंचती थी वहां तक। पृष्ठ संख्या 62, ऐसा वह घिरा था जैसे दीप हो जल में, पानी की टपक राह भला पावे कहाँ तक। मुक्त छंद के इस प्रयोग को देखते हुए यह ध्यान में रखना जरूरी है कि महेश नारायण निराला और छायावाद से लगभग 4 दशक पहले हिंदी कविता को छंद के बंधन से मुक्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। ऐसा लगता है कि महेश नारायण वाल्ट व्हिटमैन के मुक्त छंद के प्रयोग से परिचित थे। वाल्ट व्हिटमैन की घास की पत्तियां संग्रह का पहला संस्करण 1855 में प्रकाशित हुआ था और उग्र विवाद का विषय बना था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाल्ट व्हिटमैन के मुक्त छंद के प्रयोग को विचित्र प्रयोग मानते थे और निराला के मुक्त छंद को भी स्वीकार नहीं कर पाए थे। तब उनसे या किसी और आलोचक से महेश नारायण के मुक्त छंद के प्रयोग के महत्व को स्वीकार करने और उसके उचित मूल्यांकन की उम्मीद कैसे की जा सकती है। यह कविता उस काल की कविता है जब हिंदी और उर्दू की दूरी उतनी नहीं बढ़ी थी जितनी वह छायावाद तक आते आते बढ़ गई। स्वप्न में उर्दू की शब्दावली ही नहीं संरचना भी मौजूद है। इसकी भाषा वही है जिसे बाद के दिनों में गांधी जी हिंदुस्तानी कहा करते थे। यह कविता एक स्तर पर काव्य भाषा के रूप में हिंदी के बनने बिगड़ने के इतिहास की भी गवाही देती है। क्या यह आश्चर्य और दुख की बात नहीं है कि जो लोग रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि से मुक्त होने और उनके इतिहास लेखन से आगे बढ़कर हिंदी साहित्य का नया इतिहास लिखने का प्रयत्न और दावा करते हैं, उन्होंने भी महेश नारायण की कविता स्वप्न की राजनीतिक और साहित्यिक विशिष्टता के ऐतिहासिक महत्व को ठीक ढंग से समझने की कोशिश की, कौन कहे, उसका व्यवस्थित रूप से उल्लेख भी नहीं किया है।